धावला पुस्तक पंधरवी लेक्चर नंबर एक
ओम नमः सीते ओम नमः सीते ओम नमः सीते ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्रायानं नमो लोये सर्वसाहूनं निट्ठव्यट्ठकम्मं केवलनानेति तिट्ठपरमट्ठम्
आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखे हुए है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें अभी ये जो प्राकृत में लिखा है ना, संत कम्म गभ्येषु, यानी जो संत कम्म कहा है उसके शेष 18 अनुयोगत द्वारेषु निबंधन अनुयोगत द्वारम। हमने वो बंधन अनुयोग द्वार देखा था और उसमें से जो महाबंध की बात बाद में होगी और यहाँ जो अन्य शेष अनुयोग द्वार है उसकी यहाँ चर्चा चलेगी। तो कौन कौन से अनुयोग द्वार हो गए हैं उसकी अभी हम देखेंगे विषय परिचय में। इसका नाम है निबंधन अनुयोग द्वार। देखो पेज नंबर यो विषय परिचय का निकालिए। हाँ, मंगलाचरण का अर्थ देखते पहले। देखो निट्ठव्य अट्ठकम्मम, जिन्होंने 8 कर्मों का अंत करके प्रकट हुए केवल ज्ञान के द्वारा, केवल नानेनम क्या किया उसके द्वारा, दिट्ठ परमट्ठम पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को देख लिया है, परम अर्थम दिष्ट ने देख लिया, जान लिया। ऐसे अरिष्ट नेमी जिनेन्द्र, 22वें तीर्थंकर, क्या नाम है मालूम है? नेमीनाथ, उन्हीं का दूसरा नाम है अरिष्ट नेमी। यहाँ लिखा नमीयूण अरिष्ठ नेमी, अरिष्ट नेमी जिनेन्द्र को नमस्कार करके उच्छामि निबंधन योगम, निबंधन अनुयोग द्वार का कथन करते हैं। ये आचार्यों की परंपरा रही ग्रंथ के आदि में, भगवान को नमस्कार करके वो कौन सा विषय बताने वाले हैं उसको भी निबंधन ये अभी बताएंगे। इसीलिए विषय परिचय खोलो, वो आने वाला है, फिर भी जरा हम वहां से पढ़ लेते। देखो अग्रायणीय पूर्व के, ये कौन से नंबर का पूर्व है अश्विन भाई? अग्रायणीय पूर्व कितने नंबर का है? हाँ, पहला है। और वो उत्पाद पूर्व देखो, देखो अग्रायणी पूर्व के 14 अधिकारों में 5वां चयन लब्धि नाम का अधिकार है, उसमें 20 प्रावृत है। जरा वहां से जीव कांड देना, बड़ा वाला है कौन सा है? वही है, नहीं वो नीला है, लाल कलर का होगा। यू यू वाला देना, यू यू, अरे वो यू लाल वाला है। हाँ वो, हाँ वो पहला भाग बड़ा है ना, सेकंड भाग छोटा है। उनको ज्ञान मार्गना देखनी है, शुद्ध ज्ञान के भेद देखे थे हमने। नहीं, दूसरा नंबर है अग्रणी पूर्व, उत्पाद पूर्व पहला है, मुझे मुझे डाउट लगा इसीलिए मंगवाया। उत्पाद पूर्व अग्रणी पूर्व, यानी दूसरा पूर्व ही है। इन्हें 14 पूर्व जो है ना उसमें से सेकंड नंबर का पूर्व है। हमने पहले देखे थे उसके जो श्रुत ज्ञान के भेद दिखे थे, अंग 12वें अंग में ये 14 पूर्व होते, 12वें अंग के 5 भेद देखे थे, परिक्रम, सूत्र, प्रथमान योग, ये पूर्व, और वो प्रज्ञप्ति वाला जो चुली का, उसमें 5 प्रकार की प्रज्ञप्ति आती है ना। तो देखो एक एक पूर्व में क्या क्या होता है उसकी बात देखते हैं अभी। देखो एक एक पूर्व में वस्तु होती है, तो अग्रणी पूर्व में 14 अधिकारणी 14 वस्तु है, जैसे उत्पाद पूर्व में 10 वस्तु है, अग्रणी में 14 वस्तु है, इस तरह से उसको वस्तु कहते हैं। और एक एक वस्तु में क्या होते हैं, तो कहते प्रावृत होते हैं, प्रावृतक जिसको कहेंगे, और एक एक प्रावृतक में 24-24 प्रावृतक प्रावृतक होते हैं। देखो एक एक वस्तु में 20 प्रावृतक होते हैं, प्रावृत कहो प्रावृतक को एक ही बात है। देखो एक एक पूर्व में वस्तुओं की संख्या जुदी जुदी है, उत्पाद पूर्व में तो 10 ही है, इसमें 14 है, परंतु प्रत्येक वस्तु में एक एक वस्तु में 20 प्रावृत होते हैं, और एक एक प्रावृत में 24-24 प्रावृतक प्रावृत होगी, प्राप्रा 24 अधिकार है, वो प्रावृतक प्रावृतक हुए। देखो अग्रणी पूर्व पूर्व हुआ, ये दूसरा दूसरे नंबर का पूर्व है, 12वें दृष्टियावाद अंग का ये दूसरा पूर्व है। देखो दृष्टिवाद अंग 12 नंबर का है, 12वें दृष्टिवाद अंग में 14 पूर्व है, उनमें से ये अग्रणी है दूसरा। हम विषय परिचय को देख रहे हैं, 15वीं पुस्तक लाई ना, हाँ विषय परिचय में वहां लिखा है अग्रणी पूर्व के, तो 12वां दृष्टिवाद अंग है, उसमें हमने देखे 5 अलग अलग जो होते हैं अधिकार, उसमें से पूर्व जो 14 पूर्व जो होते हैं उसमें से दूसरे पूर्व का नाम है अग्रणी पूर्व, और एक एक पूर्व में अलग अलग वस्तुएं विभिन्न अधिकार होते हैं उसको वस्तु कहते हैं, तो अग्रणी पूर्व में 14 वस्तु है, तो कहते 14 अधिकारों में से, यानी 5वां चयन लब्धि नाम का अधिकार है, ये वस्तु का नाम है चयन लब्धि, उस 14 में से 5वां जो है उसका नाम है चयन लब्धि। तो एक एक वस्तु में 20 प्रावृत होते हैं, तो कहते उसमें 20 प्रावृत है, इनमें चतुर्थ प्रावृत का नाम है कर्म प्रकृति प्रावृत, और एक एक प्रावृत में 24-24 प्रावृतक प्रावृतक या प्रावृत प्रावृत होते हैं, उसको 24 अधिकार कहा, यानी अग्रणी पूर्व के चयन लब्धि वस्तु के 20 प्रावृत में से चतुर्थ प्रावृत जो कर्म प्रवृत्ति प्रावृत है उसमें जो 24 अधिकार है जिसको हम प्रावृतक प्रावृतक कहेंगे, उसमें कौन से वो 24 उसके नाम बताए, कृति, वेदना, ये नाम याद आते हैं क्या, 9वें पुस्तक में हमने देखे थे कृति अनियोग द्वार, फिर वो वेदना हमने देखा था विस्तार से, स्पर्श, कर्म, प्रकृति, बंधन, इतने तो हम देख चुके, इतने बंधन में से जो महाबंध वाला विषय है वो तो बाद में देखे हैं, क्योंकि उसके अलग से उन्होंने छठा खंड लिखा है। अब इसमें कौन कौन से बच्चे हैं, तो कहते हैं निबंधन, अब इसका स्वरूप अर्थ सब बताने वाले हैं, फिर प्रक्रम, उपक्रम, उदय, मोक्ष, संक्रम, लेशा, लेशा कर्म, लेशा परिणाम, साता सात दीर्घ रस्व भवधारणीय पुद्गलात्त यानी पुद्गलात्मक निधत्त अनिधत्त निकाचित अनिकाचित कर्मस्थिति पश्चिम स्कंद और अल्पभूत ये हाँ 24 रह गया नंबर देना 24 नंबर रह गया 24 वाला अल्पभूत इन 24 अधिकारों में से प्रस्तुत षटखंडागम मूल सूत्र के वेदना नामक चतुर्थ खंड में कृति पुस्तक नवी याद है ना क्या लिखा था संघातन कृति परिशातन कृति याद आया थोड़ा हाँ और वेदना की 10वीं 11वीं 12वीं पुस्तक उसमें वेदना की बात आई थी तथा वर्गणा नामक 5वें खंड में यानी चौथा खंड जो है वेदना उसका नाम है उसी में कृति और वेदना का उन्होंने स्वरूप बताया यानी चतुर्थ खंड में पुस्तक 9, 10 और 10, 11, 12 और वर्गणा नामक 5वां खंड उसमें शुरुआत में स्पर्श बताया फिर कर्म बताया प्रकृति बताई अधिकारों की प्ररूपना की गई है पुस्तक 13वें में वो बात हो गई। अब बंधन अनुयोग द्वार बंधन है छठा बंधन अनुयोग द्वार तो बंधन अनुयोग द्वार बंध बंधनीय बंधक और बंध विधान इन चार अवांतर अनुयोग द्वारों में विभक्त है उसमें चार अलग अलग उसके विषय है इनमें से बंध और बंधनीय अधिकारों की भी प्ररूपणा वर्गणाखंड पुस्तक 14वें में की गई है इनके वर्गणा नामक खंड में तो 13वीं पुस्तक में स्पर्श कर्म और प्रकृति बताई और 14वीं पुस्तक में जो बंध बंधनीय वगैरह हमने उसमें जो पुद्गलों के भी जो वर्गणा है उसकी भी बात हो गई थी। बंधक अधिकार की प्ररूपणा ये बंधक जो अधिकार है खुद्दाबंध नामक द्वितीय खंड में खुद्दाबंध यानी क्षुद्रबंध पुस्तक याद है खुद्दाबंध पुस्तक अश्विन भाई बोलो क्या कहा कुछ कहा उसमें बोलो खुद्दाबंध पुस्तक कौन सी है सातवीं है छठी तो चूली का थी और उसके पहले तो सत प्ररूपणा और उसमें वो सब जीव जिसको कहेंगे ना जीव खंड था वो ना उसको उसमें 6 पुस्तकें थी पहले खंड में 6 पुस्तकें थी। देखो ये 7वीं पुस्तक है यहाँ पर खुद्दाबंध यानी क्षुद्र बंध क्योंकि एज अगेंस्ट वो महाबंध था यानी पुस्तक 7वीं 9वीं का विषय नहीं अभी 8वीं पुस्तक में क्या था बंद विचय स्वामित्व था आपको याद होगा तो 8वीं पुस्तक में तो खुद्दाबंध द्वितीय खंड में किसको बंधक अधिकार और बंध विधान जो है पूरा नामक अवांतर अधिकार की प्ररूपणा महाबंध नामक छठे खंड में की गई पूरा छठा खंड उसके लिए बताया। इस प्रकार मूल षटखंडागम में पूर्वोक्त 24 अनुयोग द्वारों में से प्रथम 6 अनुयोग द्वारों के ही विषय का विवरण किया गया है क्या कहा ये 6 ही अनुयोग द्वारों को षटखंडागम में बताया है बाकी उन्होंने नहीं बताया है ये निबंधन वगैरह ऊपर जो हमने देखे निबंधन प्रक्रम उपक्रम ऊपर जो लिस्ट बताई है 24 की उसकी चर्चा षटखंडागम में नहीं है शेष निबंधन आदि 18 अनुयोग द्वारों की प्ररूपना यद्यपि मूल षटखंडागम में नहीं की गई है फिर भी वर्गणाखंड के अंतिम सूत्र को देशामर्शक मानकर देशामर्शक ने थोड़ा बताया उसमें बहुत अर्थ गर्भित है उनकी प्ररूपणा अपनी धवला टीका में यानी वीरसेन आचार्य ने तो टीका लिखी है
थोड़ा लिखा
उन्होंने उसमें से एक अंतिम सूत्र के में से इतना निकाला, 15वीं और 16वीं पुस्तक। तो उनकी प्ररूपना अपनी धवला टीका पुस्तक 15 और 16 में वीरसेनाचार्य ने प्राप्त उपदेश के अनुसार संक्षेप में कर दी है। इसका नाम सत्कर्म प्रतीत होता है और उसको सत्कर्म कह दिया। अब उसमें से जो अनुयोग द्वार है उसका एक एक का नाम और उसका स्वरूप हम देख लेते। पहले निबंधन, निबध्यते तद अस्मिन इति निबंधनम। इस निरुक्ति के अनुसार ये शब्द कैसे तैयार हुआ, तो जो द्रव्य जिसमें निबद्ध है उसे निबंधन कहा जाता है। अब उसमें निक्षेप वगैरह सब लगाएंगे और उसमें से कौन सा निक्षेप यहाँ लेना है उसकी भी चर्चा करेंगे। निक्षेप योजना में इसके ये 6 भेद किए गए हैं: नाम निबंधन, स्थापना निबंधन, द्रव्य निबंधन, क्षेत्र निबंधन, काल निबंधन और भाव निबंधन। इन सबके स्वरूप का विवरण करते हुए यहाँ नाम और स्थापना निबंधनों को छोड़कर शेष 4 निबंधनों को प्रकृत बतलाया है, यानी उसका विषय यहाँ समझाया है। साथ में यहाँ यह भी निर्देश किया गया है, यद्यपि इस निबंधन अनुयोग द्वार में 6 द्रव्यों के निबंधन की प्ररूपना की जाती है, फिर भी अध्यात्म विद्या का अधिकार होने से यह उन सबको छोड़कर केवल कर्म निबंधन की ही प्ररूपना यहाँ की गई है। सर्वप्रथम यहाँ निबंधन अनुयोग द्वार की आवश्यकता प्रकट करते हुए यह बतलाया है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के द्वारा कर्मों और उनके मिथ्यात्व प्रवृत्ति प्रवृत्ति आदि मिथ्यात्वादि प्रत्ययों की प्ररूपणा की जा चुकी है। साथ ही कर्मरूप होने की योग्यता रखने वाले पुद्गल विवेचन किया ही जा चुका है। हमने देखा वो कारमान वर्गना, उसका वो विस्तार से स्वरूप बताया है। किंतु उन कर्मों की प्रकृति कहाँ किस प्रकार होती है यह नहीं बतलाया गया है। इसीलिए कर्मों के इस व्यापार की को नहीं, व्यापार की प्ररूपणा के लिए प्रकृत निबंधन अनुयोग द्वार का अवतार हुआ है। नो आगम कर्म निबंधन के 2 भेद हैं, मूल कर्म निबंधन और उत्तर कर्म निबंधन। इनमें से मूल कर्म निबंधन में ज्ञानावरणादि 8 मूल प्रकृतियों के तथा उत्तर कर्म प्रकृति निबंधन में इन्हीं के उत्तर भेदों के निबंधन की प्ररूपना की गई है। मेरे ख्याल से हम एक एक पढ़कर फिर जब प्रक्रम की बात आएंगे तो विषय परिचय में से ले लेंगे हम। तो यहाँ हम पेज नंबर 1 पर चलते हैं, क्योंकि पूरा पढ़ने से फिर वो जमलिंग हो जाएगा, है ना। अब आते हैं ये निबंधन अनुयोग द्वार जहाँ शुरू होता है वहां से हम पढ़ेंगे। अभी हमने मंगलाचरण उसका अर्थ देखा था, 2nd पैराग्राफ। भूतबली भट्टारक ने चूंकि यह सूत्र देशामर्शक रूप से लिखा है, देखो ये सूत्र की बात वहां उन्होंने पीछे लिखी, उसको वहां से देखेंगे हम। यह उन्होंने फुटनोट में कुछ बताया था अभी अभी, नहीं नहीं वो लास्ट वाला सूत्र, वहां का सूत्र लेना, 14वें वाला लास्ट वाला, वो यहाँ फिर दोबारा उन्होंने रिपीट नहीं किया है। अतएव इस सूत्र के द्वारा सूचित शेष 18 अनुयोग द्वारों की कुछ संक्षेप से प्ररूपना करते हैं, वह इस प्रकार है। ये अभी हमने विषय परिचय में थोड़ा इसको पढ़ा था, निबध्यते तद अस्मिन इति निबंधनम। इस निरुक्ति के अनुसार जो द्रव्य जिसमें संबद्ध है उसे निबंधन कहा जाता है। बंधन में तो वो बंध, बंधनीय, बंधक वगैरह सबकी चर्चा की थी, अब ये निबंधन जो द्रव्य जिसमें संबद्ध है, यानी यहाँ पहले में नाम स्थापना सब बताएंगे, उसकी चर्चा करेंगे। निबंधन ही संयोग द्वार में पहले अपकृत निबंधन के निराकरणार्थ निबंध का निक्षेप करते हैं, उसके निक्षेप बता के फिर उसमें से किसको लेना किसको नहीं लेना किसको निराकरण करना वो बात बताएंगे। वह इस प्रकार है, नाम निबंधन, स्थापना निबंधन, द्रव्य निबंधन, क्षेत्र निबंधन, काल निबंधन और भाव निबंधन। इस प्रकार निबंधन छह प्रकार का है। देखो देखो यहाँ लिखा है ना पहले पेज, देखो जो द्रव्य जिसमें संबद्ध है, यानी दो द्रव्यों का संबंध बताए ना, किसमें वो संबंध को प्राप्त हुआ है। यहाँ पहले लौकिक की बात बताएंगे ना, और फिर बाद में वो कहाँ कैसे लगाना वो की बात करेंगे। पहले उसके छह भेद बताएं। जिस नाम की वाचक रूप से प्रवृत्ति में जो अर्थ आलंबन होता है वह नाम निबंधन है, क्योंकि उसके बिना नाम की प्रवृत्ति संभव नहीं है। किसी चीज को हम नाम रखते हैं उसके उसी को नाम निक्षेप कह देते हैं। ये निबंधन नाम, वो निबंधन को बताता है, वो नाम निबंधन है। वह नाम निबंधन अर्थ अभिधान और प्रत्यय के भेद से तीन प्रकार का है। उनमें एक व बहुत जीव तथा अजीव से उत्पन्न प्रत्येक व संयोगी भंगों के भेद से अर्थ आठ प्रकार का है। क्या कहते हैं, एक जीव और बहुत जीव, और अजीव में भी एक जीव और अनेक अजीव। तो जिसके साथ संबंध है जीव और अजीव का भी संबंध बताने वाले कर्मों का, तो एक जीव के साथ एक जीव अनेक अजीव, एक अजीव अनेक अजीव। फिर जीव बहुत लेना, उसके साथ भी एक और अनेक लगाना, तो ऐसे आठ उसके भंग हो सकते, इसको भंग कहते हैं, पॉसिबिलिटीज। तो कहते इन आठ अर्थों में उत्पन्न हुआ ज्ञान, नहीं नहीं ऊपर गया, फिर से तीसरी लाइन पढ़ती हूँ। वह नाम निबंधन अर्थ अभिधान और प्रत्यय के भेद से तीन प्रकार का है। उनमें एक व बहुत जीव तथा अजीव से उत्पन्न प्रत्येक व संयोगी भंगों के भेद से अर्थ आठ प्रकार का है। प्रत्येक भंग और संयोगी भंग, प्रत्येक भंग यानी एक जीव एक अनेक जीव, एक अजीव अनेक अजीव, ये चार तो प्रत्येक हुए और उनके संयोग करने से सब आठ हो गए। इन आठ अर्थों में उत्पन्न हुआ ज्ञान प्रत्यय निबंधन कहलाता है, जो संज्ञा शब्द प्रवृत्त होकर अपने आप को जतलाता है। संज्ञा का अर्थ होता है नाम, वो तो अपने आप को भी बताता है, पदार्थ को भी बताता है। जो संज्ञा शब्द प्रवृत्त होकर अपने आप को जतलाता है वह अभिधान निबंधन कहा जाता है। अथवा यह भी चूंकि द्रव्य निबंधन आदि निबंधनों में प्रविष्ट है, अतएव उसे छोड़कर निबंधन शब्द को ही नाम निबंधन रूप से ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर पुनरुक्त दोष नहीं आता। क्या कहते हैं, ये जो अगर उसका तीन भेद किए ना, नाम निबंधन में तीन भेद किए थे, अर्थ अभिधान और प्रत्यय, तो कहते ऐसे नहीं करते हुए निबंधन नाम रखा किसी चीज का, तो उसी को हम नाम निबंधन कह देंगे। क्योंकि अगर पहले वाले भेदों की चर्चा करेंगे तो द्रव्य निबंधन में भी वो रिपीटिशन होगा उसका, इसलिए उसको उस रूप से उसका मीनिंग नहीं लेंगे। केवल किसी चीज का निबंधन नाम रखा वो नाम निबंधन। स्थापना निबंधन, सद्भाव स्थापना निबंधन और असद्भाव स्थापना निबंधन के भेद से दो प्रकार का, हमेशा हम निक्षेप लगाते हैं इसी प्रकार से लगते हैं। सद्भाव असद्भाव कहो, तदाकार अतदाकार कहो, एक ही बात है। जो जिस प्रकार से विवक्षित द्रव्य का अनुसरण करता है उसी को उसी प्रकार से स्थापित करना सद्भाव स्थापना निबंधन है। उससे विपरीत असद्भाव स्थापना निबंधन है। इसका उदाहरण देते हैं ना, जिस प्रकार जैसे हम मूर्ति में भगवान की स्थापना करते हैं, तो जिस आकार में मनुष्याकार जो है, तो जो ध्यान में लीन ऐसी अवस्था, इसी मुद्रा को हम वहाँ बताते हैं, वो तदाकार स्थापना होती है। यह निबंधन की बात है। जो द्रव्य जिन द्रव्यों का आश्रय करके परिणमन करता है, अथवा जिस द्रव्य का स्वभाव द्रव्यांतर से प्रतिबद्ध है, वह द्रव्य निबंधन कहलाता है। अन्य द्रव्य से वो संबंध को बात बताना चाहते हैं ना, निबंधन का अर्थ संबंध, दो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ। ग्राम व नगर आदि क्षेत्र निबंधन है, क्योंकि प्रतिनियत यानी निश्चित क्षेत्र में उनका संबंध पाया जाता है। ये गांव कहाँ है तो उसके जो कुछ दिशाएं वगैरह बतलाएंगे, उसकी प्लेस बताएंगे, तो उसकी उसकी निश्चित जगह है, तो क्षेत्र निबंधन है। जो अर्थ जिस काल में प्रतिबद्ध है, वह काल निबंधन कहा जाता है। यथा आम्र वृक्ष के फूल चैत्र मास में संबद्ध है, यानी उसका जो ऋतु जो बताते हैं ना, विशिष्ट वो क्रिया जो प्रक्रिया या कार्य विशिष्ट काल में होता है, तो काल से संबंधित है। इसके लिए उन्होंने जो उदाहरण दिया, आम के फूल लेने कौन से, वो मोहर क्या कहते हैं आप उसको, गुजराती में क्या कहते, मोहर ही कहते हैं, तो वो चैत्र मास से संबंध है। अम्लिका के फूल आषाढ़ मास से संबंध है, अम्लिका ने वो चिंच इमली। विचकिल नामक वृक्ष विशेष के फूल वैशाख व ज्येष्ठ मास से संबद्ध है, क्योंकि वे इन्हीं मासों में पाए जाते हैं। अलग अलग वृक्षों की वो कहाँ वो फलते हैं फूलते हैं, उसके ऋतु निश्चित होते हैं। इसी प्रकार दूसरों के भी काल निबंधन का जानकर कथन करना चाहिए, अथवा पंचरात्रिक निबंधन काल निबंधन है, उसका अर्थ शायद समझा नहीं तो इसलिए प्रश्न चिन्ह लगाया है। पंचरत्तिया व निबंधोत्तिवा, जो द्रव्य भाव का आलंबन अर्थात आधार होता है, जो द्रव्य भाव का आलंबन अर्थात आधार होता है, वह भाव निबंधन है। जैसे लोभ के चांदी सोना आदि के निबंधन है, यानी उसको देखकर यहाँ लोभ उत्पन्न होता है, नोट कहो आज के जमाने में, क्योंकि उनका आश्रय करके लोभ की उत्पत्ति देखी जाती है, तथा उत्पन्न हुआ लोभ भी उनका आलंबन देखा, उत्पन्न हुए लोभ के भी चाहिए क्या, कि उत्पन्न हुआ लोभ भी उनका आलंबन देखा जाता है। उसमें क्या लिखा है, उत्पन्न हुआ लोभ भी उनका आलंबन देखा जाता है। क्रोध की उत्पत्ति का निमित्तभूत द्रव्य अथवा उत्पन्न हुआ क्रोध जिसका आलंबन होता है, वह क्रोध निबंधन कहा जाता है। दोनों ओर से बताया, यानी क्रोध की उत्पत्ति का द्रव्य क्या है, अरे किसी ने गाली दी, अथवा उत्पन्न हुआ क्रोध जिसका आलंबन होता है, वह क्रोध निबंधन कहा जाता है। अभी शंका पूछते कि ये सारे उन्होंने बताए कौन से, नाम स्थापना द्रव्य भाव क्षेत्र काल वगैरह, शंकाकार पूछते यहाँ इन निबंधनों में से कौन सा निबंधन प्रकृत है, यानी यहाँ कौन से निबंधन को विषय समझना। समाधान, नाम निबंधन और स्थापना निबंधन को छोड़कर शेष सब निबंधन यहाँ प्रकृत है। यह निबंधन अनुयोग द्वार यद्यपि छह द्रव्यों के निबंधन की प्ररूपणा करता है, तो भी यहाँ उसे छोड़कर कर्म निबंधन को ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यह अध्यात्म विद्या का अधिकार है। क्योंकि शेष द्रव्यों का क्या, आपस में जो कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध होगा उसको भी संबंध के, जैसे भी क्रोध के लोभ के लिए चांदी सोना भी उसका निबंधन कहा, वैसे जीव में जो उसका गमन होता है तो धर्म द्रव्य कहेंगे, सीता में अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य सबके लिए तो है ही ठहरने का। इस तरह से हम उसमें एक क्षेत्रावगाह रूप का भी संबंध बता सकते, उसकी यहाँ चर्चा नहीं करनी। अध्यात्म शास्त्र ने केवल आत्मा की बात नहीं, यहाँ कर्म की भी बात अध्यात्म शास्त्र में ली, उसको भी अध्यात्म में इंक्लूड किया, क्योंकि जीव से संबंधित है ना। शंका, निबंधन अनियोग द्वार किस लिए आया है? समाधान, द्रव्य क्षेत्र काल और योग रूप प्रत्ययों की भी प्ररूपणा की जा चुकी है, और योग रूप प्रत्ययों की भाव रूप लिखा है क्या? हाँ, भावे ही लिखा है ऊपर, कम्माणु परविदाणी
लिखा है,
वो नीचे कषाय और योग रूप से ऊपर भी योग रूप हो गया। यहाँ पूरा वाक्य ही गलत हो गया, क्योंकि योग रूप प्रत्ययों की प्ररूपणा की जा चुकी है, ये रिपीट हुआ है। देखो ऊपर देखो, दव खेत काल भावे ही कम्माणी परविदाने। हाँ, आपका वाक्य पढ़ो।
द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के द्वारा कर्मों की प्ररूपणा की जा चुकी
है। हाँ, थम, और भाव के द्वारा ये योग रूप प्रत्ययों की भी प्ररूपणा की जा चुकी, वो तो यहाँ नहीं चाहिए। प्रत्ययों की भी निकालो, भी तक योग रूप प्रत्ययों की भी, ये इतना निकालो। और अभी हम फिर हम इसको पूछेंगे, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, आगे बताओ।
भाव के द्वारा
कर्मों की कर्मों की आगे की है हमारे में, देखो हमने क्या कहा समाधान में। मयंक भाई आपने किया करेक्शन, देखो समाधान की पहली लाइन, द्रव्य क्षेत्र काल और, यहाँ तक तो रखा, आगे ये चार शब्द है ना, योग रूप प्रत्ययों की भी, उसको ब्रैकेट करके पेंसिल से उसको निकाल देना, योग रूप प्रत्ययों की भी इतना निकाल दो, और वहां लिखना भाव के द्वारा कर्मों की, लिखा भाव के द्वारा कर्मों की प्ररूपणा की जा चुकी है, उनके मिथ्यात्व असंयम कषा और योग रूप प्रत्ययों की भी प्ररूपणा की जा चुकी है। हमने देखा था उसके जो कारणों की चर्चा, जिसको प्रत्यय कहते हैं, उसमें भाव प्रत्यय द्रव्य प्रत्यय दोनों होते हैं, कर्मों के भी उदय की बात वहां बताई थी पहले, तथा उन कर्मों के योग्य पुद्गलों की भी प्ररूपणा की जा चुकी है। कर्मों के योग्य पुद्गल ने कारमाण वर्गणा, उसकी भी चर्चा बहुत विस्तार से हुई थी। अब आत्मलाभ को प्राप्त हुए उन कर्मों के व्यापार का कथन करने के लिए निबंधन अनियोग द्वार आया है। ये कौन सा आत्मलाभ? कर्मों को होगा बोलो, उसमें बोलो यहाँ क्या लिखा, आत्मलाभ को प्राप्त हुए आत्मलाभ, यानी जो कर्म रूप हो गए वो उनका आत्मा है ना। देखो, आत्मलाभ को प्राप्त हुए उन कर्मों के व्यापार का कथन करने के लिए निबंधन अनियोग द्वार प्राप्त होता है। देखो जीवों को वो समय सार में गाथा, ये आता है ना सूत्र, के अजीव ही तावत आत्म परिणाम ही उत्पद्यमानो अजीव एव। आत्म परिणाम यानी क्या? उसका अपना परिणाम। आत्म शब्द यानी स्व परिणाम, यानी जो कर्म कर्म रूप हो गए हैं अभी उसकी बात है। आप आत्मलाभ को प्राप्त हुए इन कर्मों के व्यापार का कथन करने के लिए निबंधन अनुयोग द्वारा, यानी कर्म हो जो कर्म रूप हो गए हैं उस कर्मों के व्यापार की चर्चा है। हाँ, जो कर्म रूप से हो गए उसकी बात है। पहले क्या बात बताई थी? द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के द्वारा कर्मों की प्ररूपना हो गई थी। फिर मिथ्यात्व असंयम कषाय योगों के प्रत्ययों के कारणों की चर्चा हुई थी और कर्म के योग्य पुद्गलों की भी चर्चा हुई थी। अब जो कर्म रूप हो गए हैं अभी ऑलरेडी, उनकी चर्चा यहाँ होगी। ये आत्मलाभ यानी आत्मा का लाभ वो नहीं है, यानी स्व स्वपना को प्राप्त हो गए, कर्म अपने स्वपने को प्राप्त हुए हैं, उनकी चर्चा है। कर्म नहीं, आत्मचरित्र नहीं लिखते थे स्कूल में? छत्ते किसका किसका लिखा था? पेन का लिखा था, छाता का थोड़ी सबने लिखा था। उनमें जो नो आगम द्रव्य निबंधन है वह दो प्रकार का है, क्योंकि उसके विस्तार में नहीं गए। क्योंकि द्रव्य में क्या होता है, आगम और नो आगम ऐसे भेद होते हैं, आगम के भी उसमें उपयोग नहीं है वगैरह वगैरह। फिर नो आगम में क्या एक शरीर भावी तद व्यतिरिक्त वगैरह, तो तद व्यतिरिक्त में जो कर्म की बात है तो दो प्रकार का है, यानी कर्म और अन्य जो बिना जो कर्म भी नहीं उस तद व्यतिरिक्त में कर्म की बात है, तो दो प्रकार का है, मूल कर्म निबंधन और उत्तर कर्म निबंधन। जो कर्म रूप से परिणमित हुए हैं उनकी चर्चा है अभी। उनमें मूल कर्म आठ है, उनके निबंधन का कथन करते हैं यथा। हाँ,
सभी चर्चा द्रव्य कर्म की।
बिल्कुल बिल्कुल, द्रव्य कर्म की ही चर्चा है। देखो अभी हम सूत्र एक नंबर का पढ़ेंगे। तथ नानावरणम सौव दव्येषु निबद्धम नो सौव पज्जायेषु। उनमें ज्ञानावरण सब द्रव्यों में निबद्ध है और नो सर्व पर्यायों में अर्थात असर्व पर्यायों में यानी कुछ पर्यायों में वह निबद्ध है। सब द्रव्यों में निबद्ध है यह केवल ज्ञानावरण का आश्रय करके कहा गया है, क्योंकि वह तीनों कालों को विषय करने वाली अनंत पर्यायों से परिपूर्ण ऐसे छह द्रव्यों को विषय करने वाले केवल ज्ञान का विरोध करने वाली प्रकृति है। देखो क्या कहना चाहते हैं,
नहीं समझ में आया। ज्ञानावरण सब द्रव्यों में निबद्ध है, सब द्रव्यों में क्या लेना है?
देखो देखो, सब द्रव्य ने केवल ज्ञान किसको जानता है?
सभी द्रव्यों को।
सभी द्रव्यों को, तो केवल ज्ञानावरण क्या करता है?
आवरण करता, आवरित करता है।
किसको?
सभी द्रव्यों
को, सब द्रव्यों को जानने वाले ज्ञान को।
ज्ञान को,
यही कह रहे। फिर से पूरा पढ़ेंगे, ख्याल में आएंगे। यहाँ क्या कहा? ज्ञानावरण सर्व द्रव्यों में निबद्ध है। अब उसका विशेष बताते, सब द्रव्यों में निबद्ध है यह केवल ज्ञानावरण का आश्रय करके कहा गया है। क्योंकि केवल ज्ञानावरण क्या हो रहा है? क्योंकि वह तीनों कालों को विषय करने वाली, अभी पूरा वाक्य पढ़ना, अनंत पर्यायों से परिपूर्ण ऐसे छह द्रव्यों को विषय करने वाले केवल ज्ञान का विरोध करने वाली प्रकृति है। बाकी छोड़ दो, केवल ज्ञानावरण केवल ज्ञान का विरोध करने वाली प्रकृति है। और केवल ज्ञान क्या है? तो तीनों काल और सभी छह द्रव्यों के सभी पर्यायों को विषय करने वाली है और उसका ये विरोध करने वाली प्रकृति है, इसलिए वो सभी द्रव्यों में निबद्ध है, ऐसा कहेंगे।
यहाँ पे केवल ज्ञानावरण जो मेरा केवल ज्ञानावरण है वो सभी द्रव्यों में निबद्ध है, ऐसे बता रहे हैं।
हाँ, क्योंकि वो केवल ज्ञान का विरोध करने वाली प्रकृति है, तो इतने सब ज्ञान द्रव्यों को नहीं जानने रूप वो कार्य हो रहा है। इसलिए सर्व द्रव्यों से निबद्ध है, उसका संबंध किससे है? देखो देखो, केवल ज्ञानावरण का प्रतिपक्ष कौन है? केवल ज्ञान। यानी वो केवल ज्ञानावरण किसको रोक रहा है? सभी द्रव्यों को जानने में रोक रहा है। यानी सभी द्रव्यों में सभी पर्याय, सभी द्रव्यों में सभी पर्याय भी आ गए। ऊपर क्या लिखा है? सब द्रव्यों में निबद्ध है और नो सर्व पर्यायों में, यानी असर्व पर्यायों में निबद्ध है, यानी कुछ पर्यायों में निबद्ध है। अभी वो बाकी शेष ज्ञानों की बात है। देखो,
कुछ पर्यायों में वो निबद्ध है,
अभी उसकी बात अभी बताई नहीं है, वो अभी बता रहे। असर्वणी कुछ पर्यायों में निबद्ध है इस वचन, यह वचन शेष चार ज्ञानावरण प्रकृतियों की अपेक्षा से कहा गया है। कौन से शेष चार? मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन परे ज्ञानावरण। आवरण की बात है, ज्ञान की नहीं, आवरण है। क्योंकि शेष चार ज्ञानों में सब द्रव्यों को ग्रहण करने की शक्ति नहीं पाई जाती, वो सब द्रव्यों को ग्रहण नहीं कर सकते। केवल ज्ञान सब द्रव्यों को ग्रहण करते हैं, इसलिए केवल ज्ञानावरण सभी द्रव्यों से संबंधित है, क्योंकि उसके विषय को वो रोकती है। अब बाकी चार ज्ञान तो सभी द्रव्यों को विषय नहीं करते हैं, उनका विषय क्या है? कुछ पर्याय, तो ये भी उतने ही को रोकता है। देखो, शंकाकार पूछते हैं, मति ज्ञान व शुद्ध ज्ञान सब द्रव्यों को विषय करने वाले हैं, ऐसा क्यों नहीं कहते? क्योंकि उनका मूर्त व अमूर्त सब द्रव्यों में व्यापार पाया जाता है। देखो क्या, क्यों? क्योंकि जो हम आगम के द्वारा भी जानते हैं, मन के द्वारा भी उसको समझते हैं, तो उसको भी परोक्ष रीति से तो जान ही रहे हैं। हमने भी देखा कि जीव अनंत है, पुद्गल, हमने भी छह द्रव्य है ऐसा समझा, तो उसके लिए सर्व द्रव्यों को उसको विषय क्यों नहीं, उसका उसके संबंधित क्यों नहीं कहते हैं? ये उनका प्रश्न है। समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि उन द्रव्यों की त्रिकाल विषयक अनंत पर्यायों में उन ज्ञानों की सामान्य रूप से प्रवृत्ति है, विशेष रूप से नहीं। यानी वो प्रत्येक द्रव्य में अनादि अनंत पर्याय होती है, बस इतना उसको सामान्य रूप से वो तो जानते हैं, परंतु एक एक जुदा जुदा जुदी जुदी पर्याय जैसे केवल ज्ञानी जानते हैं, ऐसे तो वे नहीं जानते हैं। ख्याल में आई बात? अथवा यदि उनमें उनकी विशेष रूप से भी प्रवृत्ति स्वीकार की जाए तो वे दोनों ज्ञान, यानी मति श्रुत ज्ञान, केवल ज्ञान की समानता को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा अगर विशेष रूप से उसको मानेंगे तो केवल ज्ञान में और उनमें क्या विशेषता रहेगी? अंतर नहीं रहेगा। परंतु ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वैसा होने पर पांच ज्ञानों का जो उपदेश प्राप्त है उनके अभाव का प्रसंग आता है। यदि पांचों ही ज्ञान समान मानेंगे तो पांच भेद कहेंगे क्यों? कोई मति ज्ञान है, कोई शुद्ध ज्ञान है, कोई केवल ज्ञान है, उसका अगर सबका विषय सेम है तो उसके भेद ही क्यों हो गए? ये कहना चाहते, समझने? ये निबंधन यानी उसका संबंध किससे है, तो संबंध यानी किसको जानने में रोकता है, उसका प्रतिपक्षी केवल ज्ञान है, और केवल ज्ञान सबको जानता है, सभी द्रव्यों को और उसकी सभी पर्याय, इसलिए वो केवल ज्ञानावरण का संबंध जो है सभी द्रव्यों से है। समझ में? एक कैसे उसका संबंध लगाया? और अन्य जो चार ज्ञान है वो तो कुछ पर्यायों को ही विषय करने वाले हैं, सामान्य रूप से वो छह द्रव्य ऐसा जानेंगे, पर सभी केवल ज्ञान के जैसे नहीं समझेंगे। हाँ देखो, शंका नो शब्द को सबसे प्रतिषेधिक रूप प्रतिषेधक यानी निषेध करने वाला रूप से क्यों नहीं ग्रहण किया जाता है। ऊपर क्या लिखा है, सब द्रव्यों में और नो सर्व पर्यायों में। नो सर्व कहा, तो कहते नो शब्द का अर्थ नहीं है, ऐसा क्यों नहीं लेते। नो का क्या अर्थ होता है, थोड़े ईशत, जैसे अन्यत्र भी आता है ना ये शब्द, कर्म नो कर्म कहो, उसमें ईशत नहीं होता है, मगर कषाय नो कषाय भी शब्द आता है और इंद्रिय नो इंद्रिय भी आता है। नो आगम वो तो उसमें अलग है, यानी उसमें उपयुक्त नहीं है ऐसा है। तो कहते नहीं, क्योंकि वैसा स्वीकार करने पर एक तो ज्ञानावरण के अभाव का प्रसंग आता है, दूसरे स्ववचन का विरोध भी होता है। इसलिए नो शब्द को देश प्रतिषेधक ही ग्रहण करना चाहिए, यानी पूरा प्रतिषेध नहीं करना, थोड़ा करना, यानी थोड़े एक ही भी पर्याय को नहीं जानता है कहेंगे तो वो ज्ञान ही नहीं रहा। फिर से देखो, अगर नो सर्व पर्याय ने किसी भी पर्याय को नहीं जानता ऐसा अगर हम कहेंगे तो क्या होगा, ज्ञानावरण के अभाव का प्रसंग आता है और स्ववचन का विरोध भी आता है। इसलिए नो सर्व करते थे थोड़े थोड़े पर्याय संबंधी उसका, क्योंकि जिसको विषय करता है उस संबंधित वो है इस तरह से। एवं दंशनावरणीयम, इसी प्रकार दर्शनावरण भी। अश्विन भाई वो माइक का मुंह उधर रखो उल्टा। इसी प्रकार दर्शनावरण भी सब द्रव्यों में निबद्ध है, ऊपर पढ़ा ना हमने, और नो सर्व पर्यायों में अर्थात असर्व पर्यायों में का अर्थ क्या है, कुछ पर्यायों में वह निबद्ध है। ख्याल में ही ना, नो सर्व का अर्थ तो कुछ में है। शंका, दर्शनावरणीय कर्म आत्मा में ही निबद्ध है, क्योंकि ऐसा नहीं मानने पर ज्ञान और दर्शन के एक होने का प्रसंग आता है। देखो ये पहले ज्ञान और दर्शन संबंधी बहुत चर्चा चली थी, आत्मा को विषय करने वाला वो दर्शन और पर को विषय करने ज्ञान वगैरह वगैरह, तो इसलिए कहेंगे वो पर को तो विषय नहीं करता, इसलिए आत्मा से संबंध ऐसा कहो, आत्मा से निबद्ध ऐसा कहो। समझ में आई ना, जो पहले दर्शन और ज्ञान संबंधी बहुत चर्चा चली थी, इसलिए शंकाकार ने ये शंका उठाई। यदि कहा जाए कि विषय और विषयी के सन्निपात के, सन्निपात यानी उसका जो कॉन्टेक्ट हुआ, विषयी किसको कहेंगे मालूम है, मनीषा बेन, हाँ प्रेरणा बेन, विषय किसको कहते और विषय विषय ने गेय गेय जिसको हम दर्शन का दृश्य कहेंगे, विषयी उसको विषय उसको जानने वाला ग्रहण करने वाला यानी हमेशा विषय में तो हम ज्ञान को भी लेते पर यहाँ दर्शन को भी लेना, ज्ञान दर्शन को विषयी कहा ना ना, विषय ने जिसको जान रहा है गेय गेय को विषय कहेंगे या दर्शन की अपेक्षा उसको दृश्य कहेंगे गेय दृश्य। देखो यदि कहा जाए विषय और विषयी के सन्निपात के अनंतर समय में जो सामान्य ग्रहण होता है वह दर्शन है तो यह भी ठीक नहीं है, ये शंकाकार कह रहा है, क्योंकि विषय और विषयी के सन्निपात के अनंतर जो आद्य ग्रहण होता है वह अवग्रह कहा जाता है। इस प्रकार के लक्षण से ज्ञान स्वरूप को प्राप्त हुए अवग्रहण के दर्शन होने का विरोध आता है। वो क्या कहते हैं, आद्य ग्रहण को ज्ञान के वो तो अवग्रह कहते हैं, इसे उसने समझा है तो उसको दर्शन मानने में विरोध बता रहा है। दूसरे यानी दूसरा पॉइंट, विशेष के बिना केवल सामान्य का ग्रहण करना शक्य भी नहीं है, यानी वो पदार्थ में वो सामान्य विशेष लगा रहे और उसके सामान्य को समझ रहा, ऐसा ही नहीं है। तो विशेष के बिना केवल सामान्य का ग्रहण करना भी शक्य नहीं है, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की विशेषता से रहित केवल सामान्य का ग्रहण बन नहीं सकता। यानी विशेषों के बिना मात्र सामान्य को नहीं पकड़ सकता। तीसरे, ज्ञान क्या वस्तु को ग्रहण करता है अथवा वस्तु को जो है नहीं उसको ग्रहण करता है कि जो है उसको? प्रथम पक्ष तो संभव नहीं है, यानी वो शंका करके बहुत विविध शंकाएं हैं, अब उसका समाधान करेंगे। क्योंकि ज्ञान के घटपट आदि वस्तुओं का परिच्छेदक न रहने से समस्त लोक व्यवहार के अभाव हो जाने का प्रसंग आता है। ये शंकाकार ने दो पॉसिबिलिटी जताई है कि वो अवस्तु को ग्रहण करता है कि वस्तु को। तो अगर वो अवस्तु को ग्रहण करता है ऐसा मानेंगे तो घटपट यानी सभी वस्तुओं का वो परिच्छेदक यानी जानने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि वो अवस्तु को ग्रहण करता है वस्तुओं को नहीं करता है। ऐसा अगर मानेंगे तो कोई लोक व्यवहार ही नहीं रहेगा। द्वितीय पक्ष भी नहीं बन सकता। दूसरा पक्ष क्या? वस्तु को, क्योंकि वैसा स्वीकार करने पर दर्शन के निर्विषय हो जाने का प्रसंग आता है। यानी ज्ञान ने ही वस्तुओं को ग्रहण किया तो दर्शन का क्या कार्य रहा? उसके लिए कुछ विषय बचा नहीं। ये कन्फ्यूजन में पड़ा है, इसलिए वो शंका इतनी बड़ी पूछ रहा है। इसी प्रकार दर्शन में भी उक्त दोनों दोषों का प्रसंग आता है। अगर हम दर्शन के बारे में प्रश्न पूछेंगे तो भी यही दोष आएंगे। ज्ञान व दर्शन युगपत वस्तु का परिच्छेदन करते हैं यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों की युगपत प्रवृत्ति होने में विरोध आता है। ये इतने सारे उन्होंने प्रश्न पूछे। प्रतिशंका ने आचार्य उनको ही शंका पूछ, तो ऐसा क्यों कह रहा है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? तो प्रतिशंका का समाधान जो कौन कर रहा है? शिष्य। शंकाकार अपने दलील प्रस्तुत कर रहा है। यह खेद है कि दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते हैं, इस आगम वचन से जाना जाता है। पर दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते वो तो केवली के लिए थोड़े ही कहा है, वो तो सामान्य के लिए कहा है। यदि कहा जाए, अभी ये शंकाकार की बात है कि वे क्रम से वस्तु का परिच्छेदन करते हैं तो यह भी संभव नहीं। पेज नंबर 5 पर देखो, पहले हमने ज्ञानावरण के निबद्ध की बात है। ज्ञानावरण को निबद्ध की अपेक्षा से कहा कि केवल ज्ञानावरण जो है वो सभी वस्तुओं से निबद्ध है। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान को वो रोकता है और केवल ज्ञान सभी द्रव्यों को विषय करता है, इसलिए केवल ज्ञानावरण का संबंध सभी द्रव्यों से कहा। अन्य जो मति ज्ञानावरण आदि 4 है तो उनके जो मति ज्ञान आदि जो है वो किसी पर कितने ही पर्यायों को विषय करते हैं। 9 सवकर्त तो थोड़े पर्यायों का विषय करते हैं, इसलिए बाकी जो 4 ज्ञानावरण है वो थोड़े पर्यायों के बारे में उसका संबंध है, तो वो उसका निबंधन है। अब कहते दर्शनावरण का भी ऐसा ही है, क्योंकि जो केवल दर्शनावरण है उनका संबंध सभी, उसका निबंधन सभी द्रव्यों से है, और बाकी जो है चक्षु अक्ष अवधि वगैरह वो कुछ पर्यायों से उसका संबंध है। इस पर शंकाकार ने बहुत लंबी शंका पूछी है पेज नंबर 5 पर। अब उसका समाधान चल रहा है नीचे का पैराग्राफ। देखो, यदि कहा जाए कि वे क्रम से वस्तु का परिच्छेदन करते हैं, कौन? ज्ञान और दर्शन, तो यह भी संभव नहीं है। ऐसे शंकाकार की दलील है, क्योंकि ऐसा मानने पर केवल ज्ञान और केवल दर्शन के भी क्रम प्रवृत्ति का प्रसंग आता है। यानी वो तो उसका स्वीकार है कि वो तो एट ए टाइम जानते हैं, तथा दोनों में से किसी एक का अभाव भी हो जाना चाहिए, क्योंकि वैसा होने पर दूसरे के अगृहित ग्रहण संभव नहीं है। इस कारण ज्ञानावरण के समान दर्शनावरण भी है, ऐसा जो वचन कहा गया वह घटित नहीं होता। ये पूरा लंबे चौड़े उसकी अभी यहाँ पर शंका यहाँ तक चालू है। छह नंबर के पेज पर आते हैं। समाधान। यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि बाह्य अर्थ से संबद्ध आत्मस्वरूप के जानने का नाम दर्शन है। केवल आत्मा को ग्रहण करने नहीं, बाह्य अर्थ से संबद्ध आत्मस्वरूप को जानने का नाम दर्शन है। यदि कहा जाए कि आत्मस्वरूप बाह्य अर्थ से संबंध नहीं रखता, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञान सुख व दुख रूप उन सभी की प्रवृत्ति बाह्य अर्थ के आलंबन से ही देखी जाती है। अतएव ज्ञानावरण के समान दर्शनावरण भी है, यह वचन संगत ही है, यह सिद्ध है।
क्योंकि ज्ञान सुख व दुख रूप उन सभी की प्रवृत्ति बाह्य अर्थ के आलंबन से ही देखी जाती है।
अभी आप दुखी क्यों हो, किसी को पूछा दुखी क्यों हो, तो उसने कहा कि मुझे शरीर में बहुत पीड़ा हो रही है, या आपको क्रोध क्यों आया, या कोई जो है, ये सुख क्यों हुआ, पैसा प्राप्त हुआ, बाह्य अर्थ से संबंधित उसके सुख दुख है। और ज्ञान भी बाह्य अर्थों का होता हुआ ख्याल में आ ही जाता है, आत्मा का नहीं होता वो बात नहीं है, पर अन्य चीजों के ज्ञान भी हो रहे हैं ना, तो ज्ञान में सुख में दुख में बाह्य पदार्थों का अवलंबन है उसके। तो यहाँ कौन सा लिया, केवल आत्मा को जानने वाला दर्शन ऐसा नहीं कहा, बाह्य अर्थ से संबद्ध आत्मस्वरूप के जानने का नाम दर्शन है। बाह्य अर्थ है बाह्य पदार्थ, यानी वो आत्म
ये कैसे घटित हो जाएगा। ज्ञानावरण
में क्या लिया, सर्व द्रव्यों को विषय करने वाला वो कौन लिया, केवल ज्ञानावरण, उसका निबंधन सभी है, इसे केवल दर्शनावरण में समझना।
अच्छा, या केवल दर्शन
और असर्व पर्याय में बाकी तीन दर्शन लेना। कुछ कहते हैं, हाँ अब देखो आगे बढ़ते। शेष कथन जानकर करना चाहिए, किसका संबंध किससे है ये बात चल रही है अपने, उसको निबंधन कहते हैं। अब आगे वेयनीयम स्व दुखम में निबद्धम। हाँ,
ये जो यहाँ पर बताया है बाह्य अर्थ से, फर्स्ट लाइन समाधान की, बाह्य अर्थ से संबंध आत्मस्वरूप के जानने का नाम दर्शन है, यानी आत्मा को जानने से पहले या साथ में बाह्य पदार्थों से संबंध है ऐसा कहना है।
नहीं नहीं, देखो पहले उन्होंने ज्ञान और दर्शन के बारे में बहुत पहले हमने विस्तार से अन्य बहुत जगह देखा भी है, द्रव्य संग्रह में भी बात है, आत्मा को ग्रहण करने वाला वो दर्शन है और बाह्य पदार्थों को ग्रहण करने वाला ज्ञान है, ऐसा भी उसके दो प्रकार से, एक सामान्य अवलोकन को दर्शन कहते और दूसरा इन्हें आत्मस्वरूप को, पर ये आत्मस्वरूप यानी केवल आत्मा को जाने वो दर्शन और पर पदार्थों को जाने वो ज्ञान, ऐसे उसकी अर्थ नहीं है, क्योंकि पर पदार्थों के संबंध रूप जो आत्मा है, क्योंकि अभी वो जानने के लिए प्रवृत्त ऐसा आत्मा लिया वो, इसीलिए क्या बाह्य अर्थ से संबद्ध आत्मस्वरूप को जानने का नाम दर्शन है, क्योंकि उसकी चर्चा उन्होंने शंकर ने बहुत सारे प्रश्न पूछे ना यहाँ पर, क्योंकि आद्य ग्रहण है उसको तो अवग्रह में चला जाएगा, आप उसको दर्शन नहीं कह सकते वगैरह वगैरह, परंतु वो वहां पदार्थों का ज्ञान होने के पहले उसने जैसे मैं इसको जानता हूँ ये इस प्रकार उसका ग्रहण होता है, और वो तो उसको स्पष्ट रूप से ज्ञान और दर्शन ख्याल में नहीं आता है, परंतु हर जगह वो मैं जानता हूँ ये बात चलती है ना वहां पर।
यहाँ पर जो तीसरी लाइन क्योंकि ज्ञान सुख व दुख रूप उन सभी प्रवृत्ति बाह्य अर्थ के आलंबन से,
ज्ञान सुख और दुख तीनों को लेना,
यानी ज्ञान भी उसमें लेना।
हाँ देखो,
यानी दर्शन गुण में ज्ञान
नहीं, ऐसा नहीं लेगा,
फिर
सेकंड लाइन बदले, बाह्य अर्थ से संबंध आत्मस्वरूप के जानने का नाम दर्शन है। अभी कोई ऐसा प्रश्न करता है, यदि कहा जाए कि आत्मस्वरूप बाह्य अर्थ से संबंध नहीं रखता, यानी आत्मा दूसरे से संबंध नहीं रखता है, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञान सुख व दुख रूप उन सभी की प्रवृत्ति बाह्य अर्थ के आलंबन से ही देखी जाती है।
यानी ये जो प्रवृत्ति देखी जाती है ज्ञान के ज्ञान में,
आत्मा की जो प्रवृत्ति है किसमें, आत्मा जो जानने का कार्य कर रहा है वो बाह्य अर्थ से संबंधित है, आत्मा के जो सुख होता है वो बाह्य अर्थ से संबंधित है, आत्मा को जो दुख हो रहा है उसने भी बाह्य अर्थ का जो संबंध रखा है। ना उसकी बात नहीं है, साता असाता की बात छोड़ो, सामने कुछ देखा ना उसने,
पर यहाँ तो बात तो चल रही दर्शन की।
हाँ,
और आप ज्ञान की बात बता रहे हैं,
ज्ञान के बात इसलिए बता
तो
रहे हैं,
ज्ञान के बाद जो कॉमा है वो नहीं चाहिए ना,
नहीं चाहिए,
यानी ज्ञान को भी ज्ञान ज्ञान को भी जानता है,
ज्ञान भी पर पदार्थों से संबंध, आत्मा पर पदार्थों से संबंध रखकर जान रहा है ये कहना चाहते, जैसे सुख दुख भी पर पदार्थों के संबंध से होता है वैसे ज्ञान भी पर पदार्थों के संबंध से हो रहा है ये कहना चाहते।
बात तो चल रही दर्शन गुण की,
दर्शन को समझा रहे कि आत्म स्वरूप जब पर से संबंध रखता है तो उसको दर्शन कहते हैं, आत्मा को ग्रहण करने वाला जो दर्शन है वो कौन से आत्मा को, पर पदार्थों से संबंध रखने वाले आत्मा को। तो आत्मा पर से संबंध नहीं रखता ऐसा नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि आत्मा जो जान रहा है सुख दुख रूप अनुभव कर रहा है उसमें पर के संबंध से वो कर रहा है, यानी आत्म स्वरूप भी पर से संबंधित है, वो उस आत्मा को ग्रहण करने वाला वो दर्शन है।
कुछ बराबर समझ में नहीं आया,
देखो अभी हमारा पदार्थों का इसका हमें ज्ञान हो रहा है, पेंसिल का ज्ञान हो रहा है, पेंसिल है पर पदार्थ है, तो आत्मा को इसके ज्ञान में इसका पर का या क्या लिखा पर का संबंध है कि नहीं है, बाह्य अर्थ से संबंध है कि नहीं है, उसे भले वो स्वयं से जान रहा है परंतु उसने अभी उसका लक्ष्य किया, तो उसका लक्ष्य करने वाला जो आत्मा है उसको ग्रहण करने वाला दर्शन है ये कहना चाहते हैं। जैसे पेंसिल को लक्ष्य करने वाला जो आत्मा ने इसका संबंध किया उस आत्मा को जिसने ग्रहण किया वो दर्शन है।
उस आत्मा को जिसने ग्रहण,
देखो देख यहाँ प्रश्न है, आत्मस्वरूप बाह्य अर्थ का संबंध रखता है कि नहीं रखता, पहली लाइन फिर पढ़ो, बाह्य अर्थ से संबद्ध आत्मस्वरूप के जानने का नाम दर्शन है। दर्शन किसको कहना, आत्मस्वरूप को जिसने ग्रहण किया जाना, उसके कौन से आत्मस्वरूप को, जिसने बाह्य अर्थ से संबंध रखा है उस आत्मस्वरूप को। तो इस पर कोई प्रश्न करेगा कि आत्मस्वरूप पर का संबंध ही नहीं रखता, कैसे नहीं रखता, ज्ञान भी कर रहा है सुख दुख भी अनुभव कर रहा है क्योंकि बाह्य अर्थ के संबंध से, इसलिए बाह्य अर्थ से संबंध रखने वाले आत्मस्वरूप को दर्शन ग्रहण कर। क्योंकि कोई कहता है ना कि आत्मस्वरूप बाह्य अर्थ से संबंध नहीं रखता, तो कहते ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्यों कि ज्ञान सुख व दुख रूप उन सभी की प्रवृत्ति बाह्य अर्थ के आलंबन से ही देखी जाती है। ज्ञान की भी प्रवृत्ति, सुख की भी प्रवृत्ति, दुख की भी प्रवृत्ति बाह्य के आलंबन से ही तो होती है, तो आत्मस्वरूप बाह्य का अर्थ आलंबन नहीं लेता ये कहना बराबर नहीं है। अतएव ज्ञानावरण के समान दर्शनावरण भी है, यह वचन संगत ही है, वो संगत नहीं, इस पर शंकाकार ने बहुत बड़े ऑब्जेक्शन दिए थे कि वो तो बाह्य अर्थ के, क्योंकि वहां सर्वद्रव्य पर सर्वद्रव्यों को विषय करता है ना, उसका संबंध सभी द्रव्यों से, इस पर उसने ऑब्जेक्शन दिया था। देखो शंकाकार की पहली लाइन पढ़ो, देखो पेज नंबर 5 पर, क्योंकि दर्शन किसको विषय करता है तो क्या आत्मस्वरूप को, इसलिए क्या कहा शंकाकार ने पूछा, दर्शनावरणीय कर्म आत्मा में ही निबद्ध है ऐसा कहो, क्योंकि ऐसा नहीं मानने पर ज्ञान और दर्शन के एक होने का प्रसंग आता है, क्योंकि ज्ञानावरण का संबंध किसके साथ बताया? सभी द्रव्यों से। क्यों? केवल ज्ञानावरण केवल ज्ञान का प्रतिपक्ष है जो सभी द्रव्यों को जानने का कार्य करता है। अब दर्शनावरण में भी अगर इससे ही प्रकार है, क्या प्रकार? तो सभी द्रव्यों में निबद्ध है ऐसा कहेंगे केवल दर्शनावरण की अपेक्षा, तो ऐसा घटित नहीं होगा। क्योंकि दर्शन की व्याख्या अभी तक हमने क्या सुनी है? आत्मा को जो ग्रहण करता है वो दर्शन। इस वाक्य के लिए इसलिए कहा कि दर्शनावरण का संबंध आत्मा से कहो, पर पदार्थों से मत कहो, ये उनके ऑब्जेक्शन है। इसलिए कहे कौन से आत्मस्वरूप को? जो बाह्य पदार्थों को विषय करने वाले आत्मा को, इसलिए उसमें बाह्य पदार्थों से उसका संबंध है ये कहना चाहते हैं। शंकाकार ने बहुत बड़ी शंका अपने ही थे ना, यहाँ पर ये पूरी बड़ी हो गई है। यानी उसमें एक शंका में उसने बहुत सारे ऑब्जेक्शंस लिए, उसका स्वयं उत्तर भी दे रहा है उस पर, और दूसरे नए नए प्रश्न भी उठा रहा है। आगे बढ़े। हाँ देखो, यहाँ निबंधन में क्या है, किससे किससे उसका संबंध है बसी थी। और ये ऐसा संबंध हमको लगता है कि केवल कर्म आत्मा में जुड़ गए वही संबंध है, उसकी बात नहीं हो रही है। वो जिसको जानने में रोका उसके साथ भी उसका संबंध बता दिया। ये निबंधन में जरा अलग से, बंधन में अलग बात थी, ये निबंधन में अलग बात है। देखो अभी वेदनीय की बात करेंगे। वेदनीयम सुख दुखम में निबद्धम, वेदनीय सुख दुख में निबद्ध है। पदार्थों के साथ निबद्ध नहीं कहा, सुख दुख में निबद्ध है। सिर की वेदना आदि का नाम दुख है। उस वेदना का उपशांत हो जाना अथवा उसका उत्पन्न ही न होना अथवा दुखोपशांति के कारणभूत द्रव्यादि की प्राप्ति होना, नहीं समझे? दुखोपशांति ने दुख का उपशमना, तो हमने वो गोली खाई, मेडिसिन खाया कोई हाँ, तो दुखोपशांति के द्रव्यों की प्राप्ति होना हाँ। सब जगह पैसा कैसा दिखता है आपको? अरे पैसा है, परंतु कोई दवाई की दुकान अभी सबका स्ट्राइक चल रहा है, पैसा का है, पैसा खाओगे क्या आप? हाँ वो द्रव्य की उपलब्धि वो पैसे के कारण होगी आपके, परंतु पैसा होगा तो वो काम आएगा, ऐसी कोई बात नहीं हुँ? पैसा है बहुत, बीमारी अकेला घर में है, लाने के दवा लाने का कोई नहीं है। पैसा बहुत लेके चल रहा है, कहीं कार एक्सीडेंट हुआ कुछ हुआ, अकेला है कोई नहीं, हुआ क्या पैसा करेगा हुँ? आपके जेब में पैसा है, अरे चोर आके पैसा लेके जाएगा, दवा नहीं देने वाला कोई वहां पर। हमने देखा ना जब भूकंप होते घर गए थे तो बिल्कुल ये ब्रिज हुआ तो क्या हुआ, वो तो उसका वीडियो भी आया था, हाथ से बैंगल निकाल के ले गया उसको बचाने के बदले। क्या पैसा करेगा, हाथ तोड़ के फिर चले जाते, क्या करेगा। देखो वेदी ने सुख दुख में ना दुखोपशांति के कारणभूत द्रव्यादिक की प्राप्ति होना, इसे सुख कहा जाता है। क्योंकि हमें वो वेदना कम हो गई तो वही सुख का अनुभव करें ना, अच्छा लगता है। उनमें वेदनीय कर्म निबद्ध है क्योंकि वह उनकी उत्पत्ति का कारण है। क्या कहा? उत्पत्ति का कारण है, निमित्त मुख्य, उसका निमित्त किसमें बनता है? ये सुख दुख रूप जो अनुभव है उसमें उसका, वो वेदनीय के कारण बाह्य पदार्थों की प्राप्ति नहीं होती है, नहीं समझे? ये पंखा अभी बंद है, साता के कारण बंद है क्या? असाता के कारण। मैंने पूछा पंखा क्यों बंद है, साता के कारण क्या? साता के कारण। देखो वेदिनी साता के उदय में जीव उन पदार्थों का लक्ष्य करके सुख रूप मानता है अपने को। वही है ना, हाँ पर दुख है अभी, उसमें कोई न्यूज आ गई होता ही नहीं। ये शुक्र को अनुभव करे, लड्डू खा रहे अच्छा, और फिर फोन आया किसी का एक्सीडेंट हुआ, ये बहुत पेट में दर्द है जो कुछ है, और फिर भी कोई अच्छी न्यूज सुनी तो वो कहाँ गायब हो जाता है, उसका लक्ष्य छूट जाता है वहां पर। यानी जीव का सुख दुख वो लक्ष्य करके सुख रूप या दुख रूप अनुभव करता है, उसकी बात है, वो वेदनीय उसके साथ संबंध है। वो वेदनी का तो उदय दिखता नहीं है, कौन सा कैसा चल रहा है। यानी केवल हम साता में पैसा मिल रहा है मत कहो, ये किसका लक्ष्य करके सुखी दुखी अनुभव कर रहा है उसकी बात है। अब पैसा मिलने से सुख होता होगा नहीं, तो आपको एक्सपेक्टेशन है 1,00,000 रुपए मिलने की और आपको 10,000 ही मिले तो सुखी हो के दुखी हो बोलो। तो पैसा मिलने पर सुख होता है कहाँ आया, नहीं समझे। हमने हमने सोचा था 1,00,000 मिलने वाले और हमको 10,000 मिले तो क्या हुआ, अरे दुखी दुखी हुआ, आने पर भी दुखी हुआ।
4 करोड़ में जगह लिया, पैसा दिया और सुखी हुआ,
सुखी हुआ। तो जाने पर भी सुख होता है ना कभी कभी। हम विचार नहीं करते ना। अरे उसकी बात छोड़ो, व्हाइट ब्लैक के छोड़ो बात। आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं और उसके लिए चाहे जितना वो आपके वो स्कूल में एडमिशन 3,000,000 रुपए तो उसने लिया तो अच्छा लगा क्योंकि देखो ये जीव की अपनी कल्पना से वो उसमें सुख दुख जो कुछ उसने जो सोच के रखा, ये हुआ तो अच्छा, वो हुआ तो उसमें तो वेदनीय का उसमें निमित्त बनता है, बस ये निमित्त बताना है। वो कुछ जीव को सुखी करने वाला दुखी करने वाला तो है ही नहीं, क्योंकि जब मोहनीय नहीं रहेगा तो वेदनीय का कुछ कार्य नहीं रहा, वो कुछ सुख दुख में निबद्ध नहीं होगा उसमें, क्योंकि भगवान को अनंत सुख है तो कौन से वेदनीय के निमित्त से होता है, नहीं होता है, वो तो अतीन्द्रिय सुख है। अब देखें आगे, मोहनीयम अपानम में निबद्धम, मोहनीय कर्म आत्मा में निबद्ध है कारण कि उसका स्वभाव सम्यक्व चारित्र रूप जीव गुणों के घातने का है, तो जीव के गुणों में डायरेक्ट घातने का निमित्त तो होता है। शंकाकार, अभी ये तो छोड़ने वाला थोड़े ही, क्योंकि घाती कर्म तो चारों ही है। ज्ञान व दर्शन के समान सम्यक्व एवं चारित्र भी चूंकि बाह्य अर्थ से ही संबंध रखते हैं, अतएव मोहनीय कर्म सब द्रव्यों में निबद्ध है ऐसा क्यों नहीं कहते हैं। समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि चारों ही घातिया कर्म जीव द्रव्य में ही निबद्ध है, यह जतलाने के लिए यहाँ बाह्य अर्थ का अवलंबन नहीं लिया है। वैसे चारों ही घाती कर्म है, जैसे हम कहते जीव विपाकी है, ऐसा आपने सुना होगा घाती कर्मों को, कौन से घाती कर्म कौन से है। बहुत अच्छा, हाँ, इसलिए उसको हम जीव में निबद्ध ऐसा भी कह सकते हैं। आवम भवमी निबद्धम, हाँ वो पूरा उल्टा ही रखो बंद, नहीं तो इसमें ज्यादा आ रही थी, नहीं आपकी उसमें माइक की आवाज जरा कम कर दी मैंने, मेरी भी कम कर दी क्योंकि बीच में वो गूंजती आवाज एको आ रही थी, मैंने वो कम कर दिया आपके लिए, आपको बढ़ाया था ना। 5 नंबर का सूत्र, आवम भवम में निबद्धम, आयु कर्म भव के विषय में निबद्ध है, उसको भव विपाक की कर्म कहते, आपको याद होगा तो, कारण कि भव धारण करना यह उसका लक्षण है। शंका, भव किसे कहते हैं। समाधान, उत्पन्न होने के प्रथम समय से लेकर अंतिम समय तक जो विशेष अवस्था रहती है उसे भव कहते हैं। किसी पर्याय में हम कहें नहीं, पर्याय में जी रहा है उसका, वो पर्याय उसकी चल रही है। नामम तिधा निबद्धम, पोगल विवागणीबद्धम, जीव विवागणीबद्धम, खित्त विवागणीबद्धम। हमने देखा था जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी और क्षेत्र विपाकी भी होता है। क्षेत्र विपाकी मालूम है अश्विन भाई? गत्यानुपूर्वी आपको वही कहना था, गत्यानुपूर्वी को क्षेत्र विपाकी कहते हैं, वहीं पर उसका उदय, अन्यत्र कभी भी नहीं। पुद्गल विपाकी तो बहुत सारे, तो पुद्गल विपाकी है ही है, उसमें से कुछ जीव विपाकी भी है, वो बताएंगे अभी। नाम कर्म तीन प्रकार के है, देखो नाम कर्म तीन प्रकार से निबद्ध है, पुद्गल विपाक निबद्ध, जीव विपाक निबद्ध और क्षेत्र विपाक निबद्ध। क्या हुआ? हाँ पढ़ा ना, पुग्गल विवाग निबद्धम वगैरह पढ़ा था। देखो वर्ण गंध रस स्पर्श और वो शौर हुआ और संघात आदि नाम प्रकृतियों का विपाक पुद्गल में निबद्ध है, क्योंकि उनके उदय से वर्णादि की उत्पत्ति देखी जाती है। यानी वैसे वैसे वर्ण वाले रस वाले परमाणु का ग्रहण होकर शरीर वैसे रचना होती है, इसलिए ये सभी प्रकृतियों को पुद्गल विपाकी कहेंगे। तीर्थंकर आदि कर्म जीव में निबद्ध है, क्योंकि उनका विपाक जीव में ही पाया जाता है, उसको जीव विपाकी कहेंगे। नहीं नहीं सब में नहीं लेना, तीर्थंकर प्रकृति है वो गति वगैरह भी ले लेंगे हम, पुद्गल विपाकी देखनी है हमको। जरा एक मिनट वो कर्म कांड निकालना, इसकी टोटल हम आप विस्तार से बता देते हैं, बाद में बताएंगे। हाँ लिफ्ट से कर्म कांड वाली पुस्तक पहली नीली ब्लू कलर की। हाँ थैंक यू। हाँ हाँ वो जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी है ना, उसकी बात देखो। पुद्गल विपाकी मैं पढ़ती हूँ, 83 पेज है कर्मकांड का। वो नई हिंदी वाली पुस्तक है, पांच शरीर पांच बंधन, 43 नंबर की गाथा। तो पुद्गल विपाकी बतानी है, 62 प्रकृतियां हैं। अभी हम कहेंगे शरीर बंधन संघात, शरीर पांच है, बंधन पांच है, संघात पांच है, फिर संस्थान छह संस्थान, अंगोपांग तीन, सहनन छ, अभी वर्ण गंध रस स्पर्श की 20 लिया, सब मिलकर 20, अलग अलग नहीं बता रही मैं। ये तो 50 हो गए, फिर निर्माण आतप उद्योत, पुद्गल विपाकी है सभी, फिर स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ प्रत्येक साधारण, प्रत्येक और साधारण वो शरीर नाम करवे, अगुरु लघु उपघात और परघात, ये सब पुद्गल विपाकी 62 प्रकृतियां। यानी पुद्गल में इनका उपाय उदय है। अब ये जीव विपा की चार आयु तो भव विपा के हमने पढ़ लिए, भव विपा की चार आयु। अब आनुपूर्वी क्षेत्र विपा की है और बाकी सब जीव विपा की है। जीव विपा की में तो घाती कर्मों की 47 आती है, वेदनी की 2 आती है, गोत्र की 2 आती है और नाम कर्म की 27 आती है। ये कल देखेंगे फिर दोबारा। देखो जीव विपाकी में क्या लेना, घाती कर्म की तो सब लेना ही लेना, यानी घाती कर्म की 47, वेदनी की 2, गोत्र की 2, ये 2। हाँ जीव विपाक में 47 और 4 51 यहाँ हो गए और नाम कर्म की 27, गोत्र कर्म की 2, वेदनी की 2 और घाती कर्म की 47। हाँ घाती कर्म टोटल ज्ञानावरण दर्शनावरण 27। ये कल बताएंगे। 27 है। हाँ हाँ हम यही रुकेंगे अभी। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नम सदा देत हो। Bang, bang.